कीर्तन
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनिताय की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान हनुमानाचार्य वृंदे की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री अक्षय तृतीया चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सेंट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज दो विशेष त्योहार हैं। पहला तो अक्षय तृतीया है जो आज के लिए ही है, लेकिन दूसरा जो त्योहार है चंदन यात्रा का, ये आज से प्रारंभ करके 21 दिनों तक चलेगा, इसलिए यात्रा बोलते हैं। यात्रा किसी त्योहार में जो है यात्रा का नाम तब दिया जाता है जब एक दिन से अधिक समय तक चलता है, तो यात्रा बोलते हैं। तो चंदन यात्रा 21 दिन के लिए आज से शुरू हुई है और आज विशेष चंदन का लेप हुआ है राधा वल्लभ को। शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ इतना सुंदर चंदन लेप, इस साल पिछले वर्ष हुआ था। हाँ, तो मैंने नहीं दर्शन किया, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा चंदन का दर्शन करने का। तो बहुत सुंदर चंदन में जो है भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। तो हम चर्चा करेंगे, आज का जो है यही विषय है। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के विषय में पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की ओर से कुछ ज्ञात है कि अक्षय तृतीया क्या होती है? कौन बताएगा अक्षय तृतीया के विषय में? कोई जानता है कुछ? हाँ बताइए। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो अलग चीज है। अक्षय तृतीया एक अलग ही, अक्षय तृतीया एक अलग ही तिथि है। ये वैशाख है, आज के दिन दान देते हैं, आज के दिन दान देते हैं सतयुग। हाँ, ये विशेष जो, ये जो विशेष तिथि है अक्षय तृतीया की, ये सतयुग जब प्रारंभ होता है। पिछली बार सतयुग प्रारंभ हुआ था, तो अभी कलयुग चल रहा है। इसके पहले क्या था? द्वापर युग। इसके पहले त्रेता युग। इसके पहले सतयुग। सतयुग 17,28,000 साल का होता है। तो सतयुग जब प्रारंभ हुआ था तो 17,28,000 साल के बाद फिर त्रेता युग आया, और त्रेता युग कितने दिन चला? 12,96,000 साल तक त्रेता युग चला। उसके बाद द्वापर युग आया, 8,64,000 साल तक द्वापर युग चला। उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के अभी 5,000 और ज़्यादा हुए, 5,000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो अभी कलयुग चल रहा है। तो सतयुग जब प्रारंभ होता है तो ये विशेष घटना होती है। आज हमने द्वारका मंदिर में भी चर्चा की थी कि सतयुग जब प्रारंभ होता है तो ये विशेष घटना होती है, क्योंकि सतयुग जब प्रारंभ होता है तो सबसे अधिक ये पवित्र दिन होता है सतयुग का पहला दिन। फिर सतयुग भी जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है तो उसमें भी कुछ दोष आता है ना, और सतयुग के अंत में जो है धर्म का एक चरण टूट जाता है ना। तो सतयुग का जो पहला दिन है ये सबसे ज़्यादा पवित्र है और बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति होती है पहले दिन में। और उसके पहले जो एक दिन पहले जो होता है वो सबसे ज़्यादा बुरा समय होता है, क्योंकि कलयुग का अंतिम दिन है। कलयुग का अंतिम दिन सबसे ज़्यादा बुरा होता है। कलयुग के अंत में क्या है कि धर्म के चारों चरण टूट जाते हैं, सत्य और शौच दया और तप, चारों चरण टूट जाते हैं, और मनुष्यों की आयु भी सबसे कम हो जाती है, 20 साल से भी कम मनुष्यों की आयु हो जाती है। घोर अज्ञान, घोर पाप, तो एक दिन पहले इतना बुरा और अगले दिन एकदम क्या होता है बड़ा, बहुत बढ़िया है ना। मनुष्यों की आयु सत्ययुग में 100,000 साल की, तो एक जहाँ 20 साल की आयु थी एकदम से क्या हो जाती है आयु 100,000 साल की हो जाती है, और मनुष्यों के आकार भी छोटे होते जाते हैं, और सत्ययुग में एकदम से क्या हो जाता है आकार भी बड़ा हो जाता है, नदियों में जो जल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, लेकिन आज के दिन से नदियों में जल भी पूरा भर जाता है, नदियों में जल पूरा होता है सत्ययुग में पूरा होता है, त्रेतायुग में 75% रहता है, द्वापर में 50% और कलयुग में 25% और कलयुग के अंत में वो भी खत्म, नदियों में जल भी खत्म हो जाता है, तो इतना बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में इतना बड़ा परिवर्तन होता है, तो इसलिए अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बहुत पवित्र माना जाता है, और ये आप समझ लीजिए कि कितने साल पहले ये आया था सतयुग, अगर कलयुग के जितने वर्ष हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो द्वापर के 8,64,000 साल और त्रेता के 12,96,000 साल और सत्ययुग के 17,28,000 साल, ये सबको जोड़ो तो जो है इतने वर्ष पहले ये समय आया था, तो अक्षय तृतीया का समय जो है ये बहुत पवित्र है, और चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी ने चंदन यात्रा आज के दिन से शुरू की, तो चंदन यात्रा तो और पहले से उनको शुरू करना था लेकिन आज के दिन से शुरू की, तो उन्होंने भी विचार किया होगा कि जो भी दिन रहा हो उन्होंने विचार किया कि आगामी भविष्य में कौन सा विशेष पवित्र दिन आ रहा है जिस दिन से चंदन यात्रा शुरू की जाए, तो अक्षय तृतीया से उन्होंने चंदन यात्रा शुरू की, तो चंदन यात्रा की जो घटना है ये माधवेंद्रपुरी से संबंधित है, इसको जरा खोल रहा है यहाँ से हरिबोल माइक खोल रहा है, ठीक ठीक हरिबोल, तो माधव हरिबोल हरिबोल झील जाता है ना तार, तो माधवेंद्रपुरी से संबंधित है चंदन यात्रा की घटना, तो आप लोगों ने आप लोगों में से कई लोग सुन चुके हैं इस चंदन यात्रा की कथा को, कितने लोग जानते हैं चंदन यात्रा की कथा हाथ उठाइए, 1-2 कुछ लोग आधा हाथ उठा रहे हैं, उनको ठीक से कुछ सुना कुछ याद है कुछ याद नहीं है, तो ये कथा जितने बार सुनी जाए और जितने बार सुनाई जाए उतना ही रस है, ये कथा जो है ऐसी है जैसे चंदन आप घिसते हैं तो जितना घिसें उतना ही उसमें सुगंध आती है, उसी प्रकार से इस कथा को जितने बार आप सुनते हैं उतना ही इसमें रस मिलता है, है ना, इसलिए जो सुन चुके हैं वो भी सुने, इतना समय नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का 4th अध्याय है, तो 213 प्यारे हैं इसमें, इतना समय नहीं कि हम पूरा अध्याय पढ़ें, तो अध्याय का सारांश ही हम पढ़ रहे हैं और अध्याय के सारांश से ही कुछ बातें हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद फिर मेरे साथ इस संबंध में जो घटनाएं हुई तो वो भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, तो बहुत ही अद्भुत लीलाएँ हैं जो हम लोगों के साथ हो रही हैं भगवान की, तो उसको भी आप लोग सुनेंगे। श्रील भक्ति वल्लभ ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 4th अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, रेमुणा, रेमुणा नामक गांव में हैं, और रेमुणा कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा में रेमुणा नामक एक गांव है, रेमुणा नामक एक सुप्रसिद्ध गांव है, और वहाँ पर गोपीनाथ का अर्चा विग्रह है, मंदिर गोपीनाथ जी का मंदिर है वहाँ, वहाँ पर उन्होंने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई जो इस प्रकार है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों को उस स्थान में कथा सुना रहे हैं, है ना, अब सुनिए बड़े ध्यान से, माधवेंद्रपुरी जिस समय गोवर्धन में थे, कहाँ पर थे, गोवर्धन में थे, तो गोवर्धन में उस समय ये पूरा जो ब्रजमंडल था वो पूरा उजड़ चुका था, जब माधवेंद्रपुरी गए तो ऐसा वृंदावन नहीं था जैसा अभी आप लोग देखते हैं, है? ना सड़कें, ना बाजार, ना मकान और कोई मंदिर भी नहीं, पूरा घोर जंगल और जंगली जानवर, हिंसक पशु और कुछ मनुष्यों की जातियां थीं जो अशिक्षित थीं, कुछ भी भगवान की लीलाओं का चिन्ह नहीं था। केवल तीन चीज़ें थीं जो पहचान में आती हैं, जमुना जी, गोवर्धन और ब्रज की रज, ये तीन चीज़ें। तो माधवेंद्रपुरी जब गए तो केवल तीन चीज़ें थीं, कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण से सब उजड़ चुका था, सब मंदिर टूट चुके थे, ध्वस्त हो चुके थे और अर्चा विग्रह वहाँ जो मंदिरों के थे तो वो छिपे हुए थे, कोई किसी कुंड में छिपे हैं, कोई झाड़े में छिपे हैं, कोई ज़मीन के अंदर, कोई टीले के अंदर, सब अर्चा विग्रह छिपे हुए हैं कि मुसलमान जो है खंडित करेंगे अर्चा विग्रहों को। तो अर्चा विग्रहों को पुजारी लोग इधर उधर छिपा करके चले गए और फिर कई सौ साल बीत गए तो अब कुछ भी पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि कौन अर्चा विग्रह कहाँ है। तो ये अर्चा विग्रह स्वयं किसी किसी भक्त को अपना पता बताते हैं कि हम यहाँ पर हैं, मुझे निकालो। तो ये घटना जो है, मतलब वो है जो माधवेंद्रपुरी के साथ सबसे पहले हुई है, और वो गोपाल अर्चा विग्रह हैं जिन्होंने माधवेंद्रपुरी को सपना दिया। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से, गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी हैं और इनका जो नियम है वो क्या है, अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति इनकी है। अयाचक का मतलब कि बिना मांगे कुछ कुछ भोजन मिल जाए तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, कितना मुश्किल। और एक स्थान में नहीं रहते, स्थान बदलते रहते हैं, तो किसको पता कि ये महाराज भूखे हैं और ये कुछ मांगते नहीं। तो माधवेंद्रपुरी यहाँ गोवर्धन में आए और इतने आश्रित हैं कृष्ण के और शरीर से इतने ऊपर उठे हुए हैं कि भूख प्यास का उनको कुछ पता नहीं रहता है और कृष्ण के प्रेम में प्रसन्न है। अब कई दिनों से भी खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो भी इनके चेहरे में प्रसन्नता रहती है, कृष्ण के प्रेम की प्रसन्नता रहती है। सब लोग सुन रहे हैं कि कहीं और ध्यान है? हाँ सुनिए ध्यान से, हरि वो जय हो। अच्छा सुनिए बड़े ध्यान से। तो हुआ क्या कि माधवेंद्रपुरी को जो है दूध देने के लिए भगवान कृष्ण आ गए वहाँ पर। सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए, अभी अभी सुनने का समय है। तो कृष्ण जो है एक छोटे बालक के रूप में आ गए माधवेंद्रपुरी को दूध देने के लिए और उन्होंने जो है अपना परिचय दिया कि मैं यहीं पर रहता हूँ और मेरा नाम गोपाल है, और इस तरह से कहा कि मेरा नाम गोपाल है, मैं यहीं रहता हूँ, कि माधवेंद्रपुरी समझ नहीं पाए कि यही उनके इष्ट देव हैं, कृष्ण हैं, गोपाल आ गए गोपाल आ गए तो माधवेंद्रपुरी नहीं पहचान पाए और वो बालक ये कह के चला गया कि ये दूध आप पी लीजिए और मैं बाद में बर्तन ले जाऊंगा, और चला गया। और माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया तो दूध का भी स्वाद अलग ही था, भगवान का दिया हुआ दूध उसका अलग ही स्वाद था और वे जो है उस बालक का इंतजार करते रहे, उनके ऊपर भार आ गया कि ये बर्तन उस बालक को देना है, और वो बालक नहीं आया और पूरी रात उस बालक के बारे में ये सोचते रहे। और रात्रि के अंत में थोड़ी सी झपकी आई, इसको बोलते हैं तंद्रा, होता है ना ऐसा, तो उनको जो है थोड़ी झपकी आई, तो स्वप्न देखा कि वही गोपाल, वही बालक जो है माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आया और उसने कहा कि मैं यहीं इसी स्थान का देवता हूँ, गोपाल जिसने गोवर्धन धारण किया था, और मैं यहाँ पास के ही झाड़ी में पला हुआ हूँ और मैं जाड़ा और गर्मी और बरसात और आंधी का बहुत कष्ट सहन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी स्थापना करो, है ना। और वो बालक महादेवेंद्र गुरु के सपने में उनका हाथ पकड़ करके ले गया झाड़ी में, जहाँ की बहुत कांटे, लेकिन स्वप्न के शरीर से वो जा सकते थे। तो बालक स्वप्न के शरीर से माधवी बुरी को ले गया, वहाँ कांटे कांटे हैं, है? और उस बिंदु में बताया कि यहाँ पर जो है मैं हूँ और मुझे निकालो। और फिर माधवी बुरी की जब निद्रा टूटी तो बहुत वो जो है रोने लगे कि भगवान तो मेरे पास आए थे दूध देने के लिए, मैं पहचान नहीं पाया मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना अपराधी हूँ, मैंने भगवान को नमस्कार नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं की। तो बहुत पश्चाताप करने लगे। फिर याद आया कि भगवान ने तो मुझे आदेश दिया है और मुझे क्या करना है। तो स्वप्न का जो है पूरा उनको याद आया कि कौन से स्थान में बताया था उन्होंने कि मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ, लेकिन अब इस शरीर से तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो झाड़ी में पहुँचना सब कांटे और जो झाड़ झंकड़ सब लगा हुआ है। तो वहाँ के जो निवासी थे उनको बुलाया उन्होंने कि अरे आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, गोपाल यहाँ दबे पड़े हैं, उनको निकालना है, फावड़ा कुढ़ाली लेकर के आओ। और वहाँ के जो ब्रजवासी थे वो माधवीपुरी के आदेश के अनुसार फावड़ा कुढ़ाली लेकर के आए और उन्होंने माधवीपुरी के अनुसार वो रास्ता बनाया, सब कांटे हैं झाड़ी हैं सब काट काट करके रास्ता बनाया। और माधवी गुरु ने जिस स्थान पर कहा इस स्थान में जो है दबे पड़े हैं भगवान, बहुत आसानी से मिट्टी को हटाओ, है? तो जब मिट्टी हटाई तो जो है गोपाल पूरी मतलब जो है जैसे मनुष्य के आकार के जो है अर्चा विग्रह मिले गोपाल जी। तो इसमें लिखा है अगले दिन उस अर्चा विग्रह को जंगल से खोद निकालने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस के साथियों को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने श्री गोपाल जी के अर्चा विग्रह को बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। तो गोवर्धन पर्वत के शिखर पर अभी भी एक मंदिर है, तो वहाँ पर जो है माधवीपुरी ने उनको स्थापित किया। फिर उन्होंने गोपाल जी के की पूजा की और अन्नकूट उत्सव मनाया। इस उत्सव का सर्वत्र पता लग गया और निकटवर्ती गांवों के अनेक लोग उसमें सम्मिलित होने आए। तो पहली बार जंगल में मंगल हुआ, पहला मंदिर माधवीपुरी ने स्थापित किया और जो है निकटवर्ती गांव के बहुत लोग सम्मिलित होने के लिए आए। फिर 2 साल तक इस प्रकार से चलता रहा गोपाल जी की सेवा, और खूब लोग जो है अपने अपने घरों से भोजन बना करके लाते हैं और रोज अन्नकूट होता है, रोज अन्नकूट होता है। गोपाल जी का जो है खूब भंडार बढ़ गया, उनकी गौएं भी खूब हो गई और खूब भोग लग रहा है बढ़िया है। और माधवेंद्रपुरी अब तो बहुत ही सुरक्षित हो गए कि अब उनको बिना मांगे सब कुछ मिलता है गोपाल जी की सेवा में। तो 2 साल तक इस प्रकार से रहा, और 2 साल जब पूरे हुए तो उसके कुछ दिन पहले ही 2 ब्राह्मण आ गए बंगाल से, जो कि माधवेंद्रपुरी की आज्ञा के अनुसार सेवा पूजा करने लगे और माधवेंद्रपुरी का भार कुछ उतर गया। तो 2 साल के बाद इसमें लिखा एक रात गोपाल ने फिर माधवेंद्रपुरी को सपना दिया और उनसे जगन्नाथपुरी जाकर कुछ चंदन का लेप लाने और अर्चा विग्रह को लेप करने के लिए कहा। गोपाल जी ने क्या कहा कि आपने हजारों घड़े ठंडे पानी से मेरा स्नान कराया है, लेकिन मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है, क्योंकि कई 100 सालों से मैं पड़ा गर्मी का, तो वो मेरे शरीर का ताप नहीं गया है और मेरे शरीर का ताप दूर करने के लिए चंदन लाना है आपको, और आप ही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। उन दोनों चंदन और कहीं नहीं मिलता था, और पैदल ही जाना, और कहाँ जाना, जगन्नाथपुरी, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पैदल ही जाना है ना। तो गोपाल जी ने कहा कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और मेरे शरीर में ताप, मेरे शरीर का ताप दूर होना है। तो माधवेंद्रपुरी इस आदेश को सुन करके उन्होंने कुछ भार नहीं माना, बल्कि बहुत प्रेम से जो है उत्साहित हुए, बहुत प्रेम उमड़ पड़ा, प्रेम का आवेश हुआ है माधवेंद्रपुरी को। सोचिए इतनी दूर और इतनी गर्मी में पैदल चलना कितना कठिन, और फिर अयाचक वृत्ति, कुछ मांगना नहीं, कौन देगा खाने को, कितना कठिन है, इनका जो है नियम। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सेवा कोई ये कार्य नहीं कर सकता, तो भगवान दिखाना चाहते थे कि इस संसार में ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है जो भगवान की सेवा में इतना समर्पित हो और इतना कष्ट इतने कष्ट को भी कुछ नहीं मानता है, है? बल्कि इसमें और अपना सुख मानता है। तो ऐसे जो है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये तार हिल जाता है, हरि बोल हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से माँ देवेंद्रपुरी चल पड़े उड़ीसा के लिए चल पड़े और रेमुणा गांव में पहुंचे। रेमुणा में गोपीनाथ जी का मंदिर है ना, तो वहां पर पहुंचे, वहां पर गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को भोग लगा हुआ, एक क्षीर पात्र उनको प्राप्त हुआ। वो क्षीर पात्र गोपीनाथ ने चुराया था और उन्होंने इसे माँ देवेंद्रपुरी को दिया था। तो भगवान ने खीर का एक बर्तन गोपीनाथ जी ने माँ देवेंद्रपुरी के लिए चुराया। देखिए कितना आश्चर्य और कितना सौभाग्य कि भगवान ने माँ देवेंद्रपुरी के लिए चोरी की, है ना। क्योंकि माँ देवेंद्रपुरी जब वहाँ पर पहुँचे देवड़ा मंदिर में, तो खीर का भोग लग रहा था। उन्होंने पुजारी से पूछताछ की, तो पुजारी ने बताया कि ये खीर अमृत केली नाम की खीर होती है और ऐसी खीर यहीं बनती और कहीं नहीं बनती, है ना। तो इनके मन में इच्छा हुई कि अगर ऐसी खीर का मुझे स्वाद मिल जाए तो ऐसी खीर मैं अपने गोपाल के लिए बनाऊं। तो इनके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थोड़ी थी कि अपने लिए चखना चाहते थे, लेकिन इनकी इच्छा हुई कि अगर मुझे बिना मांगे अगर मिल जाए तो मांग तो सकता नहीं मैं। तो इनके मन की ये इच्छा को गोपीनाथ जी समझ गए और गोपीनाथ जी ने इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए क्या किया कि रात्रि में जब पुजारी ने 12 पात्र थे खीर के, 12 पात्र होते हैं जो भोग लगते हैं, तो पुजारी ने क्या किया कि जब भोग लगाया तो गोपीनाथ जी ने एक पात्र चुरा लिया और अपने वस्त्रों के पीछे छिपा दिया। और जो पुजारी था जब भोग लगने के बाद, उसको थोड़ी पता था कि भगवान भी चोरी करते हैं, तो उसने तो जो है 11 पात्र थे तो उसने तो ध्यान दिया नहीं कि भी 11 पात्र हैं, तो उसने उठा करके अपने रख दिए अलग और भगवान के मंदिर में पोछा वगैरह लगा करके और सो गया। और जब सो गया तब गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया, उठ पुजारी मैंने एक पात्र चुराया है लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया है कि तूने 11 ही पात्र उठाए हैं और 12 पात्र नहीं उठाए हैं, एक पात्र मेरे वस्त्रों के पीछे छिपा हुआ है और ये मैंने चोरी की है। माधवेंद्रपुरी नाम का एक मेरा भक्त है और मंदिर के बाहर वो जो है किसी दुकान में, दुकान तो सब बंद है, तो दुकान में बैठा हुआ जप कर रहा है, तुम उसको ये पात्र ले जा करके दे दो। तो इतना भगवान ने मतलब विवरण दिया पुजारी को कि माधवेंद्रपुरी नाम के मेरे भक्त हैं। अब पुजारी को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने स्वयं बताया मैंने चोरी की और माधवेंद्रपुरी नाम का मेरा भक्त है, हाँ ये चोरी का माल उसको देना है। तो इतना जो है विवरण मुझे मिला, तो उसको जो है मतलब उसने सोचा, तो उसने फिर स्नान किया। स्नान करके जब गया मंदिर में तो सचमुच एक पात्र वहाँ था और वहाँ जो उसने रखे थे वो 11 ही पात्र थे। तो फिर जो है वो एक पात्र लेकर के और रात में ही मंदिर के बाहर निकला और आवाज़ देने लगा कि माधवेंद्रपुरी नाम के कौन भक्त हैं जो इतने भाग्यशाली हैं, तीनों लोगों में उनके समान कोई भाग्यशाली नहीं है जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर का एक पात्र चुराया है। तो माधवेंद्रपुरी ने जब अपना नाम सुना तो वो जो है सामने आए है? और इन्होंने पुजारी ने बताया कि आपके दर्शन करके तो मैं भी मेरा भी बड़ा सौभाग्य है आपके दर्शन मुझे हुए कि आपके लिए गोपीनाथ जी ने चुराया है ये पात्र। तो माधवीपुरी भी रोते रोते उन्होंने वो पात्र लिया और खीर भी खाई और उसका पात्र को भी टुकड़े करके अपने वस्त्र में बांध लिया कि ये भगवान ने चूँकि चुराया है तो ये मिट्टी का जो पात्र ये भी मुझे नहीं फेंकना है, ये भी खाना है। तो रोज एक टुकड़ा उसको भी वो खाते थे। हरि बोल। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो है अब रात ही रात में वो जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अब सवेरा होगा, पुजारी तो सबको बताएगा ही और भीड़ लग जाएगी, लोग जो है मेरी पूजा करेंगे, मुझे नमस्कार करेंगे और जो है चरण छुएंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए, प्रतिष्ठा से बचने के लिए थोड़ा पानी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए महादेवनपुरी ने जो है गोपीनाथ जी को वहीं से नमस्कार किया। मंदिर तो बंद था, अब दर्शन तो कर नहीं सकते थे, वहीं से नमस्कार किया और चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। तो जगन्नाथपुरी जब पहुंचे, इसमें लिखा है जगन्नाथपुरी पहुंचने पर माधवेंद्रपुरी को राजा से अनुमति प्राप्त हो गई कि वे अपने साथ एक मन चंदन और 20 तोला कपूर ले जा सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे तो उनको भी समाचार पहले से मिल गया। माधवेंद्रपुरी जब पहुंचे उससे पहले ही समाचार मिल गया और जगन्नाथपुरी में भी इनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत प्रशंसा हुई। तो ये वहाँ से भी भागना चाहते थे लेकिन वहाँ से नहीं भाग सकते थे क्योंकि गोपाल की आज्ञा है कि चंदन लेके आना है। तो फिर चंदन इनको जो है मिल गया, एक मन चंदन मिला। एक मन चंदन किसको मिल सकता है, एक मन चंदन मिला। एक मन मतलब 40 शेर का होता है, तो 1 किलो से थोड़ा कम होता है, तो 37 किलो करीब जो है एक मन चंदन होता है। सोचिए 37 किलो चंदन इनको जो है मिल गया और दो ब्राह्मण मिल गए तो वो इनके साथ में तो ये आ रहे हैं अब चंदन को लेकर के आए। ये दो व्यक्तियों की सहायता से ये सामग्री रेमुणा लाए। उन्होंने फिर से स्वप्न में देखा। अब रेमुणा में लाए थे तो रेमुणा में रुक करके, एक रात रुक करके इनको आगे बढ़ना था क्योंकि गोवर्धन में जो गोपाल हैं उनको चंदन चाहिए। लेकिन रेमुणा में जब रुके तो रात्रि में गोपाल ने स्वप्न दिया, जो गोवर्धन के गोपाल हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है, उन्होंने फिर सपना दिया। और सपना दिया क्या बोले कि चंदन को कपूर के साथ मिलाकर लेप तैयार करके गोपीनाथ जी के विग्रह पे लगा दो और इससे मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। गोपाल जी ने सपना दिया। यहीं पर ही अब चंदन आगे मत लाओ क्योंकि गोपाल जी जानते थे कि मुसलमानों का शासन है और जगह जगह बहुत प्रतिबंध हैं, बहुत रोक लगे हुए हैं और बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए माधवीपुरी के कष्ट को जो है भगवान गोपाल समझते थे लेकिन माधवेंद्रपुरी को कोई कष्ट नहीं, वो तो बहुत उत्साह में। तो इस तरह से गोपाल जी की आज्ञा से माधवेंद्रपुरी ने यह अपना स्वप्न सुनाया गोपीनाथ जी के पुजारियों को और पुजारी लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे गोपीनाथ जी को इतना चंदन लगेगा। तो फिर माधवीपुरी ने कहा कि दो हमारे आदमी हैं, दो आपके आदमी, 4 आदमी मिलकर के चंदन घिसेंगे और ये पूरा का पूरा चंदन गोपीनाथ जी के शरीर में लगाना है। कितना चंदन था, 37 किलो चंदन गोपीनाथ जी को लगाना है। तो इस तरह से माधवीपुरी वहाँ तब तक रहे जब तक पूरा चंदन समाप्त नहीं हो गया। अब सोचिए 37 किलो चंदन कितना होगा है? तो पूरी गर्मी मतलब इस प्रकार से निकल गई और गोपीनाथ जी को जो है वो चंदन लगता रहा जब तक कि पूरा चंदन समाप्त नहीं हो गया। तो ये तो घटना है इसकी कि चंदन माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हुए ईश्वरपुरी और उनके शिष्य श्री चैतन्य हुए और श्री चैतन्य की परंपरा में हम सब लोग आते हैं और श्री चैतन्य की परंपरा में जितने भी मंदिर हैं तो उन सब मंदिरों में ये चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो मूल कारण है वो घटना आपने सुनी तो चंदन यात्रा का जो कि जो मूल घटना है वो ये है ना कि गोपाल जी ने इस प्रकार से स्वप्न दिया था माधवेंद्रपुरी को और माधवेंद्रपुरी ने जो है चंदन यात्रा की थी, है ना। तो ये तो लीला है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ इसी से संबंधित कुछ घटनाएं हुई जो कि बहुत आश्चर्य की थी, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये घटना 30 मई 2014 की है, 30 मई 2014 करीब 2 साल पहले, है ना, 2 साल पहले की घटना है। आज के दिन मैंने दिल्ली के छिपीवाड़ा मंदिर में प्रवचन दिया, किस तारीख को, 30 मई 2014 को। आज के दिन मैंने दिल्ली के छिपी बड़ा मंदिर में प्रवचन दिया। प्रवचन में पहले से ही निश्चित हो गया था कि मैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत चौथे अध्याय में वर्णित माँ देवेंद्रपुरी की उस लीला को सुनाऊंगा, जिसमें गोवर्धन पर्वत में एक स्थान पर कई सौ वर्षों से दबे पड़े हुए गोपाल अर्चा विग्रह ने माँ देवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि मुझे इस स्थान से निकालो, क्योंकि मुझे गर्मी, वर्षा, आंधी तथा जाड़े का अत्यंत कष्ट मिल रहा है। भगवान की ऐसी आज्ञा मिलने पर माँ देवेंद्रपुरी ने वहाँ के निवासियों को आदेश दिया कि वे कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर उस स्थान तक जाने के लिए रास्ता बनाएं जहाँ गोपाल दबे पड़े हैं। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि प्रवचन तो रात्रि 8 बजे से शुरू होने वाला था, परंतु सायं 5 बजे से अत्यंत भयानक आंधी चलने लगी। अब ये घटना तो मुझे सुनानी थी, और उस घटना में क्या बात आएगी कि गोपाल जी कह रहे हैं कि आंधी का कष्ट मुझे हो रहा है, आंधी का, वर्षा का, गर्मी का और जाड़े का कष्ट मुझे हो रहा है। तो 5 बजे तो मैं उधर था ईष्टभ कैलाश वाले मंदिर में, तो 5 बजे से ही क्या शुरू हुई, आंधी शुरू हुई, भयानक आंधी चलने लगी, फिर कुछ वर्षा हुई। इस आंधी के कारण अनेक वृक्ष गिरे, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों में गाड़ियों के आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट हुई। अब देखिए ये कितने आश्चर्य की बात है कि मैं जिस कथा का वर्णन करने वाला था वैसी घटना पहले से ही घटित हुई। कथा में गोपाल कह रहे हैं कि मुझे गर्मी, आंधी तथा वर्षा का महान कष्ट हो रहा है, तथा आज कथा के पहले ऐसा ही हुआ। गर्मी का तो समय चल ही रहा था और आंधी और वर्षा भी हुई है, तो भीषण गर्मी के दिन तो चल ही रहे हैं, और आज कथा की बात को पुष्ट करने के लिए भयानक आंधी और कुछ वर्षा भी हुई। फिर कथा में वर्णन आया कि माँ देवेंद्रपुरी की आज्ञा से लोगों ने कुल्हाड़ी और फावड़ा से वहाँ की झाड़ियों को काट काट कर रास्ता बनाया। तो यही घटना मैंने रास्ते में देखी। मैं जिस समय ईष्ट कैलाश के मंदिर से छिपी वाला मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में बहुत से वृक्षों के गिरने के कारण रास्ते में बहुत रुकावट आई, तथा मैं और मेरे संगियों ने देखा कि रास्ते में अनेक वृक्ष गिरे हुए हैं और उन्हें लोग काट काट कर रास्ता को साफ कर रहे हैं। हरि हो। और देखो, और ये जो राधा वल्लभ हैं तो इनकी भी इसी प्रकार से की हालत थी, जैसे गोपाल दबे पड़े थे ऐसे यहाँ पर भी इनको कोई मतलब कोई ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी, तो ये भी ऐसी एक प्रकार से दबे पड़े थे, कुछ ठीक से इनकी पूजा और सेवा कुछ नहीं हो रही थी, ना ऐसा श्रृंगार हो रहा था। हाँ, तो वो ये घटना मतलब कितना मिलान हुआ है ना। इसके अतिरिक्त एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। उस समय कथा में यह भी वर्णन आया था कि जिस समय गोपाल की स्थापना हो गई, उस समय अनेक लोगों ने गोपाल जी को अनेक प्रकार के उपहार दिए। ये कथा उसमें आगे चल करके आती है कि जब गोपाल जी का स्थापना हो गई तो फिर बहुत लोगों ने आकर के उपहार दिए गोपाल जी को। कथा में इन उपहारों का विस्तृत वर्णन हुआ है। अब कथा के अंत में जिस समय मैं छिप्पीवाड़ा से अपने ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर लौट रहा था, उस समय रास्ते में मैंने गाड़ी में लगी हुई सीडी जिसमें मेरे अनेक प्रवचन भरे हुए थे को जैसे ही चालू किया, उस समय सीडी में ऐसा प्रवचन प्रारंभ हुआ जिसमें इस बात का विस्तार से वर्णन आया कि श्री कृष्ण के जन्म के समय पर किस प्रकार ब्रजवासियों ने नंद महाराज के घर में आकर अनेक प्रकार के उपहार दिए। आप समझ रहे हैं? तो ये कथा तो मैंने यहाँ सुनाई कि गोपाल जी को बहुत उपहार मिले है? पहले तो कथा में वर्णन आया कि आंधी, वर्षा और गर्मी है? तो वो लीला हो गई। और जब मैंने ये सुनाया कि गोपाल जी को बहुत उपहार प्राप्त हुआ, तो जब हम गाड़ी से गए तो गाड़ी में लगी मशीन को चालू किया, तो मेरी आवाज़ में जो प्रवचन निकल रहा था उसमें ये लीला निकली कि कृष्ण के जन्म के अवसर पर ब्रजवासियों ने बहुत उपहार दिए, कृष्ण को उपहार दिए है? तो श्री कृष्ण के जन्म के समय पर किस प्रकार ब्रजवासियों ने नंद महाराज के घर में आकर अनेक प्रकार के उपहार दिए, ये सभी आश्चर्य श्री कृष्ण की व्यवस्था से होते हैं। इन आश्चर्यों के विषय में कोई भी व्यक्ति पहले से किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था, सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा का ही चमत्कार है। हरि बोल। अब सुनिए और क्या लीला हुई। ये घटना है 25 जून 2014 की। अभी तो 30 मई की घटना थी ना, 30 मई 2014, अब 25 जून 2014 की घटना है। इस दिन हम वृंदावन गए थे, तो ये बात पहले से ही निश्चित थी कि इस्कॉन वृंदावन में मैं प्रवचन दूंगा। इस दिन 25 जून 2014 के दिन मैं सवेरे सवेरे वृंदावन गया था, तो निश्चित था कि वृंदावन में मुझे प्रवचन देना है। तो इस्कॉन वृंदावन में प्रवचन देने के पश्चात मैं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके गोवर्धन के गोविंद कुंड नामक स्थान में श्रील माधविंद्रपुरी के गोपाल आचार्य विग्रह का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। हाँ, तो उस समय भी ये चंदन यात्रा का ही समय चल रहा था, तो जिनके कारण चंदन यात्रा शुरू हुई तो हमने सोचा कि भाई उनका दर्शन करें। तो 25 जून के दिन हम जब वृंदावन गए तो वहाँ प्रवचन दिया, वहाँ प्रसाद लिया और फिर गोविंद कुंड में आए और वहाँ जो है गोपाल आचार्य विग्रह का दर्शन मैंने किया। तो जिस समय मैं गाड़ी में बैठकर गोवर्धन की ओर जा रहा था, उस समय गाड़ी में बैठे हुए भक्तों को मैं इस पुस्तक में लिखी हुई उन घटनाओं को पढ़कर सुना रहा था जिनमें मेरे सामने श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएँ की थी। अचानक रास्ते में मुझे पढ़ना बंद करना पड़ा क्योंकि उस समय मुझे कुछ ऐसी दवाएं ग्रहण करनी थी जिनको ग्रहण करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है, दो दो मिनट के अंतर में दवाइयां लेनी है तो 10 मिनट समय लगता है, तो कथा बंद करनी पड़ी। इसी बीच में मैं गोपाल आचार्य विग्रह के सामने पहुंच गया, गाड़ी वहां पहुंच गई और मैं उतर भी गया और गोपाल आचार्य विग्रह के सामने मैं पहुंच गया। अब ये अत्यंत आश्चर्य की बात हुई जिसके विषय में ना तो मैंने ही सोचा और ना किसी अन्य ने सोचा, कोई सोच नहीं सकता था। जिस समय मैंने गोपाल आचार्य विग्रह के सामने उन्हीं घटनाओं को उसी क्रम में पढ़ना आरंभ किया जहाँ पर कुछ समय पहले मैंने पढ़ना बंद किया था, उस समय अचानक उस घटना का भी वर्णन आ गया जो दिनांक 30 मई 2014 को छिप्पीवाड़ा मंदिर में प्रवचन करने के पहले घटित हुई थी। आंधी और वर्षा की लीला जो 30 मई को हुई थी उस घटना को मैंने वहां पढ़ा। उस दिवस पर श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो लीला की थी उसका विस्तृत वर्णन इसी पुस्तक की उक्त दिनांक में किया गया है जो मैं पढ़ चुका हूं। तो ये लीला उसी समय निकली जिस समय मैं वहां पर पहुंच गया। अब कितना आश्चर्य है, जिन के कारण वो लीला हुई थी आंधी वर्षा की तो ये लीला जो है वहां पर ये निकली क्रम से, जबकि मैं क्रम पर से पढ़ रहा हूँ। उस प्रवचन में मैंने श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़कर सुनाया था कि श्री माधवेंद्रपुरी से स्वप्न में गोपाल आचार्य विग्रह ने कहा कि हे पुरी, मुझे इन झाड़ियों में पड़े हुए जाड़ा गर्मी वर्षा तथा आंधी का अत्यंत कष्ट हो रहा है, अतः मुझे इस स्थान से निकालकर मंदिर में मेरी स्थापना करो। ये भी अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि गोपाल के आचार्य विग्रह की घटना का वर्णन उन्हीं गोपाल के आचार्य विग्रह के सामने हुआ। ये कितना आश्चर्य, बहुत लीलाएं हैं और मैं लगातार क्रम से पढ़ रहा हूँ और जब वो लीला निकली तो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, उन्हीं के सामने पहुँच गया हूँ। आश्चर्य है कि नहीं, थोड़ा आश्चर्य ज़्यादा, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, आश्चर्य नहीं समझ रहे। जैसे मैं पहुँचा वहाँ पर तो जिन्होंने स्वप्न दिया था वही जो है उन्हीं के सामने ये लीला निकली है ना। ये अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि गोपाल के आचार्य विग्रह की घटना का वर्णन उन्हीं गोपाल के आचार्य विग्रह के सामने हुआ जिसके विषय में ना तो पहले से मैंने और ना ही किसी अन्य ने सोचा था। अब एक बहुत बड़े संदेह का निवारण हुआ। इस समय एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि श्री माधवेंद्रपुरी के गोपाल आचार्य विग्रह इस समय वास्तव में नाथ द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं अथवा वे कहीं अन्यत्र हैं। तो माधवेंद्रपुरी के गोपाल जब प्रकट हुए थे और स्थापना हुई थी चैतन्य महाप्रभु से भी बहुत पहले की बात है, तो अभी यही धारणा चल रही है हर जगह कि वो गोपाल जी जो माधवेंद्रपुरी के गोपाल जी जिन्होंने सपना दिया था माधवेंद्रपुरी को, दो बार सपना दिया, पहली बार सपना दिया कि मैं झाड़े में दबाऊँ और जब उनको निकाल के स्थापित कर दिया तो दूसरी बार सपना दिया कि मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, मेरे लिए चंदन लाओ। हैं तो अभी सब जो है इसी विचार में है कि वो गोपाल जी अब नाथ द्वारा में है, श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं, है ना। चूंकि श्रीनाथ जी के अर्चा विग्रह तथा गोपाल के अर्चा विग्रह में एक बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों अर्चा विग्रहों का बायां हाथ गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए ऊपर उठा हुआ है, दोनों ही श्रीनाथ जी का भी अर्चा विग्रह इसी प्रकार से है। ये जो उंगली है गोवर्धन पर्वत को धारण करने के लिए उठी है और गोपाल अर्चा विग्रह का भी इसी प्रकार का है दोनों। अतः सभी लोग विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत के स्थानीय निवासी लोग समझते हैं कि मूल अर्चा विग्रह नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं और यहाँ गोविंद कुंड में स्थित गोपाल का अर्चा विग्रह प्रतिभू मूर्ति हो सकता है। सबकी धारणा यही है, क्या धारणा है कि जिन्होंने माधवीपुरी को सपना दिया था वो तो नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी के नाम से और यहाँ तो प्रतिभू मूर्ति है कोई, है ना, सब लोग ही सोचते हैं। परंतु जब मैंने इस मंदिर के पुजारी से पूछताछ की तो पता चला कि ये गोपाल जी ही मूल अर्चा विग्रह हैं। हरिओम। जो पुजारी पूजा करते हैं वो बता रहे हैं जिन्हें श्री माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में स्थापित किया था तथा ये पुजारी माधवेंद्रपुरी की ही से परंपरा में है, तो वो परंपरा से ही पूजा चली आ रही है, तो गोपाल जी तो कहीं नहीं गए, वो तो वहीं हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने भी यही माना कि श्री माधवेंद्रपुरी के गोपाल अर्चा विग्रह मूल रूप से यही हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन की घटना से भी ये बात पुष्ट हुई, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की व्यवस्था से उस घटना का वर्णन इन्हीं गोपाल जी के सामने पढ़ा जिसमें गोपाल जी श्री माधवेंद्रपुरी से कह रहे हैं कि मुझे कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, अतः मेरी स्थापना मंदिर में करो। अतः ये बात पुष्ट हो गई कि श्री माधवेंद्रपुरी के असली गोपाल अर्चा विग्रह यही हैं। अब आप समझ रहे हैं कि मैं कई घटनाएं भगवान की जो लीलाएं हो रही हैं तो वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और जैसे ही वहाँ पहुँचा गोपाल अर्चा विग्रह के सामने उस समय वही लीला निकली। कौन सी लीला? कि गोपाल ने माधवीपुरी को सपना दिया कि मुझे निकालो, है ना। तो वो संकेत कर रहे हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैंने ही सपना दिया था माधवीपुरी को, तो वही संकेत कर रहे हैं। तो ये इस लीला से भी संकेत मिला कि ये मतलब कहीं नहीं गए हैं, ये यहीं पर हैं, है ना। तो इस तरह से ये बहुत आश्चर्य की घटना हुई। अच्छा, अब ये तो 25 जून की थी घटना, अब 26 जून की घटना, उसके अगले दिन क्या हुआ? 26 जून 2014 के दिन, नहीं क्षमा करना, अब ये घटना 7 जुलाई 2014 की है, 7 जुलाई 2014 की घटना है। चूंकि ये दिन सोमवार का था, आज भी सोमवार का दिन है तो ये दिन सोमवार का था, चूंकि ये दिन सोमवार का था तथा दिल्ली मंदिर में ये नियम है कि प्रत्येक सोमवार के दिन यहाँ पर भागवत पर प्रवचन ना होकर श्री चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन होता है, अतः इस दिन की कक्षा में क्रम के अनुसार आदि लीला अध्याय 13 और 115 नंबर की प्यार पर प्रवचन हुआ, जिसका अर्थ यह था कि बालक निमाई के जन्म के अवसर पर शिला अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता ठकुरानी शांतिपुर से बालक की माता सची देवी के भोजन के लिए अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री और उपहार लेकर सची देवी के घर आई। ये उस प्यार का अनुवाद था चेतन चरतामृत। तो ये भी एक आश्चर्य की बात थी कि जिस दिन मैं गोपाल की गायों को खिलाने के लिए भोजन की सामग्री लेकर दिल्ली से गोवर्धन में स्थित गोविंद कुंड में जाने वाला था, उसी दिन प्रातः काल के प्रवचन में ऐसी प्यार आई। श्री कृष्ण की ऐसी व्यवस्था को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अच्छा, हाँ क्षमा करना, मैं इसके पहले की भी घटना सुनाना चाहता हूँ कि हुआ क्या। कि 26 जून को जो है जब मैंने वृंदावन की यात्रा की थी उस दिन गोविंद कुंड में स्थित माधविंद्रपुरी के गोपाल आचार्य विग्रह का दर्शन करने के लिए मैं गया था। इस घटना का वर्णन इस पुस्तक में 26 जून 2014 के दिनांक में विस्तार से हुआ है। अच्छा, इसमें 25 जून लिखा था क्या? 26 जून ठीक है, उसको 26 जून समझ लीजिए। तो 26 जून गोपाल का दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठा, उस समय उस मंदिर में रहने वाली गोपाल की 3 गायें मेरे निकट आकर कुछ भोजन पाने के लिए अपने मुखों को मेरे सामने अत्यंत व्यग्रता से निकट ले आईं। गौएं होती ना खाने के लिए, तो अपना मुंह ऐसे करती हैं आगे की तरफ। उस समय मेरी इच्छा हुई कि यदि मेरे पास गायों को खिलाने के लिए कुछ सामग्री होती तो मैं गोपाल की गायों को कुछ भोजन खिलाने का आनंद लेता। अब ये घटना 5 जुलाई 2014 की है कि मैंने पुनः गोविंद कुंड में जाकर गोपाल का दर्शन करने और यहाँ से कुछ सामग्री ले जाकर गोपाल की गायों को भोजन खिलाने का आनंद लेने का विचार किया। उस समय मैं धनंजय कृष्ण प्रभु से फ़ोन पर बात कर रहा था कि क्या गोविंद कुंड के रास्ते में पलवल नामक स्थान में, जो उनका मिड डे मील नाम का रसोई घर है, वहाँ से चोकर के लड्डू बन सकते हैं जिन्हें मैं गोपाल की गायों को अपने हाथों से खिलाऊंगा। उस समय धनंजय कृष्ण प्रभु ने कहा कि सची गौर सुंदर प्रभु चूंकि वृंदावन की गौशाला में काम करते हैं, अतः वे जानते हैं कि चोकर के लड्डू किस प्रकार बनाए जाते हैं। यदि वे मुझे फोन पर यह विधि बताएं तो मैं अपने रसोई घर में चोकर के लड्डू बनवा सकता हूँ। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि धनंजय कृष्ण प्रभु ने इतनी बात कहकर के फोन रखा तथा जो ही सची गौर सुंदर प्रभु को फोन करना चाहा कि ठीक उसी समय सची गौर सुंदर प्रभु का धनंजय कृष्ण प्रभु के पास फोन आया। अब वो फोन करना चाहते थे पूछने के लिए कि चोकर के लड्डू कैसे बनते हैं, तो उन्हीं का फोन आ गया। इसका कारण यह था कि गोपाल आचार्य विग्रह को भी अत्यंत उत्कंठा हुई कि मैं अपने हाथों से उनकी गायों को चोकर के जो लड्डू खिलाना चाहता हूँ तो मेरी ये इच्छा शीघ्र पूरी हो। इसीलिए गोपाल ने सचिव और सुंदर प्रभु के हृदय में ऐसी प्रेरणा की कि उन्होंने किसी कारणवश ठीक उसी समय धनंजय कृष्ण प्रभु को फोन किया। गोपाल की अद्भुत लीला को देख समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। तो ये 5 जुलाई की घटना। अब 7 जुलाई को अब हम चले हैं, है ना? तो 7 जुलाई को अब हमें वो प्रवचन की जो प्यार है वो आई इस प्रकार की। 7 जुलाई को जो सवेरे प्रवचन हुआ उसमें जो चैतन्य चरितामृत की प्यार है वो क्या किस प्रकार की आई कि बालक निमाय का जन्म हुआ है और सीता ठकुरानी शांतिपुर से अनेक प्रकार के उपहार, भोजन की सामग्री और उपहार लेकर के आई हैं सच्ची माता को देने के लिए, है ना? चूंकि आज सवेरे के प्रवचन में वर्णन आया था कि सीता ठकुरानी उपहार का एक बड़ा भार लेकर सची देवी के घर गई थीं, तो इसी प्रकार की घटना अब मेरे साथ घटित हुई। उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के मन में कुछ ऐसा विचार आया कि उन्होंने गोपाल को देने के लिए 2.5 किलो मिठाई ले ली। इनके दिमाग में कुछ पता नहीं क्या है, 2.5 किलो मिठाई ले ली कि गोपाल को वहाँ देंगे। अमृत कृष्ण प्रभु ने गोपाल के लिए कुछ फल लिए और रास्ते में स्थित धनंजय कृष्ण प्रभु के रसोई घर में यद्यपि चोकर के लड्डू नहीं बन सके परंतु उनके स्थान पर गोपाल के गायों के लिए 60 किलो चपातियां मिल गईं और 40 किलो चोकर मिल गया। उपहार देखो कितना उपहार मिल गया, 60 किलो चपाती और 40 किलो चोकर मिल गया। इस प्रकार गोविंद कुंड तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास गोपाल और उनकी गायों को देने के लिए उपहार का एक बड़ा भार बन गया। ये भी एक अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि किस प्रकार इतना अधिक उपहार एकत्रित हो गया। सवेरे की प्यार में था कि बालक निमाई की माता के लिए सीता ठकुरानी उपहार लेने गई और हम जो है शाम तक जब पहुंचे गोपाल के पास तो इतना उपहार हो गया, 60 किलो चपाती, 40 किलो चोकर और 2.5 किलो मिठाई और फल सब जो है हो गया, है ना? अब गोविंद कुंड पहुंचकर मैंने अपने हाथों से गोपाल की गायों को चपातियां खिलाने का आनंद प्राप्त किया। हरि बोल। इसके पश्चात मैंने देखा कि गोविंद कुंड के निवासियों में भी ये भ्रांति फैली है कि शीला माधवेंद्रपुरी ने जिन गोपाल जी की मंदिर में स्थापना की थी वे इस समय नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हो रहे हैं। यद्यपि गोपाल अर्चा विग्रह के पुजारी गोविंद दास स्पष्ट कह रहे थे कि माधवेन्द्रपुरी के गोपाल अर्चा विग्रह मूल रूप से यही हैं, परंतु वहां के निवासीगण इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और बहुत सालों से ये चल ही रहा है, सबका ही चल रहा है, और वो पुजारी बताते भी हैं तो कोई उस बात को समझ नहीं पाता है। सब हाँ हाँ बोलते हैं और समझते वही हैं जो पहले से समझ रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है कि ये गोपाल जी वही हैं। हम बोलते हैं कि भाई तो नाथ द्वारा में, और पुजारी बताता है तो हाँ हाँ बोलते हैं सब और समझते कुछ भी नहीं है ना। इस प्रकार मेरा भी उनके साथ कुछ विवाद हुआ, तो पहली बार है कि मैंने बहस की उन लोगों से, क्योंकि वो कोई मतलब वहाँ बहस करने वाला है ही नहीं, तो मैंने बहस की। अब जो ही मैं गोविंद कुंड से गाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर चला, उसी समय गाड़ी में लगे हुए पेन ड्राइव में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मैंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 72वें अध्याय का पाठ करते हुए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का वर्णन किया है। उस समय पेन ड्राइव से युधिष्ठिर महाराज के शब्द मेरी आवाज़ में सुनाई पड़े, हे श्री कृष्ण, मैं ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग लोक के सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करके ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं की इस महान सभा में ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा। अब यदि विचार किया जाए तो ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि गोविंद कुंड में स्थित गोपाल अर्चा विग्रह के विषय में जिस प्रकार विवाद चल रहा है कि माधवेन्द्रपुरी के मूल अर्चा विग्रह हैं अथवा नहीं, उसी प्रकार के विवाद की चर्चा पेन ड्राइव की कथा में भी निकली। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वे सभी देवताओं और राजाओं की सभा में इस बात की स्थापना करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। तो पेन ड्राइव की इस कथा के द्वारा मेरे लिए एक संकेत प्राप्त हुआ कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे इस बात की स्थापना हो सके कि श्री माधवेन्द्रपुरी के मूल गोपाल अर्चा विग्रह यही है। श्री कृष्ण की व्यवस्था से पेन ड्राइव में ऐसी कथा के निकलने के कारण मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो ऐसी बहुत मतलब घटनाएं हैं और कई प्रकार के संकेत मिलते हैं तो ये जो भ्रांति है ये बहुत समय से चली रही, और इसका एक कारण ये भी है कि श्रीनाथ जी का भी अर्चा विग्रह ऐसा ही है, गोवर्धन को धारण करने के लिए उनका बायां हाथ ऐसे उठा हुआ है, और गोपाल जी का भी उसी प्रकार का है, तो लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन गोपाल जी का जो अर्चा विग्रह है तो माधवेन्द्रपुरी को उन्होंने बताया था कि मेरी स्थापना बज्जन आपने की थी, है ना। लेकिन श्रीनाथ जी के विषय में गर्ग संहिता में लिखा है कि कलियों के 4500 वर्ष बीतने के बाद गोवर्धन की एक कंदरा से इनका प्राकट्य होगा, ये प्रकट होंगे, तो स्वतः प्रकट। तो श्रीनाथ जी स्वतः प्रकट अर्चा विग्रह हैं क्योंकि नाथ द्वारा में उनकी पूजा हो रही है। तो ये जो भ्रांति है ये फैली हुई है और पहले से फैली थी, तो प्रभुपाद ने भी उसी दिशा में बात बोली है, तभी बड़ा मुश्किल है इस बात को जो है समझना कि वो गोपाल जी जो है मतलब मूल अर्चा विग्रह वही हैं, गोविंद कुंड में ही, गोवर्धन में ही है, इस बात को समझना और समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत समय से मतलब चल रहा है। हाँ, आपको कुछ कहना है?
प्रभुपाद जी भी चैतन्य चैतन्य को लेता
है। हाँ, तो प्रभुपाद ने भी लिखा है
कि संप्रदाय के द्वारा,
हाँ, कि वो जो है नाथ द्वारा में उनकी पूजा हो रही है, तो प्रभुपाद ने भी लिखा है, तो चूंकि प्रभुपाद ने भी लिखा है तो इसलिए अब जो है ये जो विषय है वो काफ़ी कठिन हो गया है। लेकिन जो भ्रांति पहले से फैली हुई थी तो प्रभुपाद ने उसी के आधार पर जो लिख दिया है तो उसमें कुछ दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई अभी प्रश्न है, कोई चर्चा? हमारे पास कितना समय है? 9 बजे तक करना है, 9 बजे तक, तभी हमारे पास समय है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। अच्छा, गोवर्धन, गोवर्धन की परिक्रमा में गोविंद कुंड एक स्थान है, गोविंद कुंड बहुत प्रसिद्ध स्थान है, तो गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड मिलता है, ठीक है ना। तो गोविंद कुंड में ही ये मंदिर है, है? मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मंदिर है, लेकिन वैसे अच्छा है, पक्का मंदिर है। चार गौएं हैं गोपाल जी की, और गोविंद दास वहाँ के पुजारी हैं। राधा कुंड नहीं, राधा कुंड तो जो है गोवर्धन की परिक्रमा में बहुत अलग है। गोवर्धन की परिक्रमा कितनी 22 किलोमीटर की है, हैं 24 जो भी हो, 22-24 जो भी हो, गोवर्धन की परिक्रमा इतनी बड़ी है। तो गोवर्धन की परिक्रमा में राधा कुंड श्याम कुंड वो तो अलग हैं, और दूसरी तरफ जो है गोविंद कुंड मिलता है, जतिपुरा की तरफ है। छोटी नहीं, बड़ी बड़ी परिक्रमा भी, बड़ी परिक्रमा भी गोविंद कुंड। जतिपुरा वो स्थान है जहाँ माधवेन्द्रपुरी रहते थे, तो वो जतिपुरा वो नाम पड़ गया उसका। जति मतलब उस समय जो लोग हैं माधवेन्द्रपुरी एक बड़े सन्यासी हैं, तो जति बोलते हैं जति, तो जतिपुरा वो स्थान माधवेन्द्रपुरी के नाम से पड़ा है। तो वहाँ पर जो है गोपाल जी का मंदिर है। और कोई प्रश्न किसी का, या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ। अच्छा ये बताइए, जब माधवेन्द्रपुरी जब पहुँचे गोवर्धन में, वृंदावन में, गोवर्धन में जब पहुँचे, तो वृंदावन का उस समय हाल कैसा था? ऐसा ही था क्या जैसे आजकल? नहीं था। क्या था? पूरा जंगल, एक भी मंदिर नहीं था, सब लुप्त। और अर्चा वगैरह जितने थे मंदिरों के, वो सब छिपे हुए थे। क्यों छिपे हुए थे? मुसलमान लोग जो है खंडित करेंगे, इसलिए सब छिपे हुए थे, है ना। और सबसे पहले अर्चा विग्रह ने अपना जो प्राकट्य किया, अपना अपनी पहचान बताई, अपना पता बताया, वो ये गोपाल जी है। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ ये तीन चीज़ें, हाँ ये तीन चीज़ें थी बस, यही जो है मतलब चिन्ह थे ब्रज मंडल के, यही तीन चिन्ह थे, ब्रज रज, यमुना जी और गोवर्धन, जिनको पहचाना जा सकता है, और कुछ भी नहीं था। नहीं, तुलसी अगर मान लो हो गई है तो कहीं भी हो गएगी, तो इसमें कोई मतलब ऐसे संकेत नहीं मिलता ना। तो माधवेन्द्रपुरी ने सबसे पहले मंदिर स्थापित किया, और अर्चा विग्रह ने स्वयं अपना पता बताया, खुद ही अपने को जो है कहा कि मुझे निकालो, मैं इस स्थान में हूँ। और बाद में फिर छह गोस्वामियों ने श्री चैतन्य की आज्ञा से बहुत से लुप्त लीला स्थलियों की खोज की और उनके नाम रखे, है ना, जैसे भांडीर वन, है ना, और खदीर वन, वृंदावन है, तो ये सब जो है 12 वन हैं। और वहाँ पर जैसे भोजन थाली, यमासुर की गुफा है, तो ऐसे जो स्थान हैं चरण पहाड़ी, तो सब स्थान जो है बाद में खोजे गए, लेकिन जब माधवेन्द्रपुरी गए तो कोई स्थान नहीं था, सब लुप्त हो गए थे, कुछ भी पता नहीं था, है ना। अच्छा माधवेन्द्रपुरी कैसे सन्यासी थे? वो यात्रा भी करते थे, लेकिन क्या किसी से मांगते थे? कुछ नहीं मांगते थे। अच्छा अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति में तो उनको फिर बड़ा कष्ट होता होगा कि भूखे प्यासे मांग नहीं सकते, तो उनको क्या बड़ा कष्ट होता था इस बात? नहीं, क्योंकि वे शरीर से ऊपर उठे हुए कृष्ण प्रेम में हमेशा प्रसन्न रहते थे, उनको भूख प्यास का कुछ अनुभव नहीं होता था। कितने दिनों से नहीं खाया है उन्हें उतना भी पता नहीं था, कितने दिनों से नहीं खाया है ना। तो गोवर्धन पर्वत का दर्शन किया, यमुना जी में स्नान किया, और जो है खूब प्रेम के आंसू बहाए, नृत्य किया, और बिल्कुल अकेले, हैं, और गोविंद कुंड के तट पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं भजन कर रहे हैं, हैं। उस समय एक बालक आया है ना, बालक आया हैं, और वो क्या बोला कि आप जो है किसका ध्यान कर रहे हो, आपने बहुत समय से खाया नहीं है। बालक जो है इस प्रकार से बोलता है, और इन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे है पता कि मैंने कुछ नहीं खाया है। तो बालक ने कहा कि यहाँ पास में कुएं में पानी भरने वाली स्त्री आई थी, उन्होंने मुझे जो है बताया, बालक ने ऐसा उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने मुझे ये दूध दे करके भेजा है आपके पास कि आप दूध पी लीजिए। तो माधवेंद्रपुर ने दूध पी लिया, और उसके बाद उस बालक का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई, और उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज क्या हो गया कि मेरा मन इस बालक में कृष्ण में ना लग करके इस बालक में मेरा मन लग रहा है। तो वो नहीं पहचान पाए कि वो बालक कृष्ण ही है, लेकिन चूंकि वे कृष्ण थे, वो बालक कृष्ण ही थे, इसलिए उनका मन उस बालक का चिंतन कर रहा है। तो माधवीपुरी सोच रहे हैं कि आज तो मेरे भजन में बड़ी बाधा पड़ रही है कि मेरा मन जो है एक सामान्य बालक में लग रहा है, लगा हुआ है, और कृष्ण को छोड़ रहा है मेरा मन, जबकि उनका मन कृष्ण ही लगा हुआ था, क्योंकि वो बालक जो है कृष्ण ही थे, लेकिन वे नहीं पहचान पाए। और जब तक भगवान ना पहचानवाए तब तक कौन पहचान सकता है। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे उनको पता चला कि वो कृष्ण थे? दर्शन दिए उस बालक ने, सपने में दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिए, है ना। और सपने में तो दर्शन कई बार आपको होते हैं या हमको होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेषता है कि इस स्वप्न में है, क्या विशेषता है? जो स्थान बताया उस स्थान में वो निकले, ऐसा सपना थोड़ी आता है किसी, ऐसे सपना आता है कि भाई आपने राधा वल्लभ का दर्शन सपने में किया, तो जैसे आप अभी दर्शन कर रहे हैं वैसे सपने में दर्शन कर रहे हैं, तो वो तो वो कोई अंतर थोड़ी, वो तो उसी प्रकार का है जैसे आपने अभी दर्शन। लेकिन माधवेंद्रपुरी को जो दर्शन हुआ वो कुछ विशेष था कि अन्यथा कोई नहीं जान सकता है कि गोपाल जी कहाँ पर है। और माधवेंद्रपुरी ने वो कांटे के रास्ते को जो है साफ करवाया, नहीं तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि गोपाल ने उनको स्वप्न के शरीर से वहां ले गए। तो स्वप्न के शरीर से तो कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन इस स्थूल शरीर से कोई नहीं जा सकता। तो माधवेंद्रपुरी बता रहे हैं भाई यहाँ से रास्ता बनाओ, इधर से रास्ता बनाओ, इधर फिर ये बिंदु है, यहाँ से मिट्टी हटाओ, उन्होंने बताया, और गोपाल जी मिले। हाँ जी, आप बोलिए।
जैसे कि पृथ्वी का जितने भी चीज़ें हैं भगवान का सृष्टि है, जैसे कि आग है या पानी है, तो अगर भगवान का सृष्टि आग है और भगवान को थोड़ा आग भी लग जाता है तो इसमें भगवान का कष्ट होता है, क्योंकि उसके
नहीं इसको आप नहीं, नहीं अभी ये समझिए इस बात को कि भगवान की सब शक्तियाँ हैं भगवान, लेकिन भगवान जब लीला करते हैं, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में लीला करते हैं, तो वे लीला करते हैं तो मनुष्य की लीला करते हैं। जब भगवान मनुष्य की लीला करते हैं तो बताते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, और जो भक्त होता है वो भगवान को इसी मनुष्य भाव में वो मान करके भगवान की जो है सेवा करता है। भगवान अपनी योग माया के द्वारा अपने ऐश्वर्य को ढक देते हैं, और भक्त भगवान की महिमा को ना समझ करके भगवान को अपने जैसा मनुष्य समझ करके भगवान का कष्ट दूर करता है। ये जो है भाव कहलाता है, ये भक्ति का भाव कहलाता है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है।
ये जो लीला जो हुआ गोपाल जी का, इसमें क्या सीख देना चाहते हैं हमें? ये जो लीला में क्या मतलब,
इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि भगवान जब लीला करते हैं, भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो मनुष्य की तरह लीला करते हैं भगवान। और भक्त को चिंता होती है कि भगवान को भूख लगी है, भगवान को क्या भूख लगेगी, भगवान को क्या प्यास लगेगी, वे तो सबको भोजन दे रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, भगवान को क्या भय है कोई मंदिर तोड़ने आ रहा है, भगवान को क्या भय है। लेकिन भगवान जो है भक्तों के अंदर वो चिंता पैदा करते हैं, और एक चिंता एक अपने आप में एक आनंद है, भक्त को चिंता होती है, भगवान को भूख लगी है, भगवान को सोना है, भगवान को सुलाना है, है ना। तो जब भक्त को चिंता होती है तो ये चिंता एक प्रकार का एक आनंद है जो कि भक्त लोग प्राप्त करते हैं। सामान्य लोग सोचेंगे फिर क्या फायदा, भगवान को भी भूख लग रही है, हमको भी भूख लग रही, तो फिर अंतर क्या रहा हम में भगवान में। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं तो वो भगवान से दूर जाते हैं ये सोच करके, हाँ कि अरे इनमें क्या शक्ति है, ये हमारी क्या रक्षा करेंगे, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो दूर जाता है, अरे भगवान को जो है भोजन की जरूरत है क्या, भगवान को क्या कपड़े पहनने की जरूरत है क्या, भगवान को सुलाने की जरूरत है, अगर वो किसी के आश्रित होकर के ही वो कुछ खा पाते हैं सो पाते हैं तो हमें क्या आश्रय देंगे, छोड़ो भगवान को। तो वो तो भगवान से दूर जाते हैं, आप समझे। लेकिन यही योग माया भक्तों को भगवान के पास लाती है कि भक्त अपनी तरह सोचते हैं, अपनी तरह सोचते हैं कि मुझे भूख लगती है तो उनको भी भूख लग रही है, मुझे प्यास लगती है तो उनको भी प्यास लग रही है, तो उनको कौन खिलाएगा, उनको कौन पिलाएगा, मैं तो अपना खा लूँगा पी लूँगा, उनको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। तो जैसे बालक जैसे छोटा सा बच्चा होता है कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, हाँ तो माता को चिंता होती है। तो भक्तों को जो है भगवान इस प्रकार की चिंता पैदा करते हैं, और जब भक्त भगवान का चिंतन करते हैं इस प्रकार से तो उनकी शुद्धि होती है, वो भगवान अंत में भगवान के धाम में जाते हैं। हरि बोल। एक इसी प्रकार की चिंता किसी के अपने पुत्र के प्रति है, हाँ तो वो भगवान के धाम में नहीं जाएगा, वो तो बंधन है उसका, ये भौतिक आसक्ति है। और लेकिन वही चिंता अगर भगवान के प्रति हो जाए या भक्त के प्रति हो जाए तो वो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनाहक व्योविदु, जो आसक्ति है ये एक ऐसा बंधन है जो कभी घटता नहीं है। लेकिन सएव साधु सुकृतो, और वही आसक्ति अगर भगवान के प्रति या साधु के प्रति हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। तो कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि ये भगवान है। कोई अगर भक्त जो है उनको अपना पुत्र मान करके और उनकी जो है सेवा करता है और अपना आश्रित समझ करके उनकी सेवा करता है, हैं, और उसकी ऐसी आसक्ति हो जाती है भगवान की सेवा में और चिंता हो जाती है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कैसे होगी उनकी सेवा। तो ये अगर आपके अंदर भाव पैदा हो गया कि उनकी सेवा कैसे होगी, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे, और भगवान अगर ऐसी चिंता पैदा कर दें आपके मन में तो समझिए कि आप जो है आपका सब बंधन दूर हो गया और इस जीवन के बाद आपको जो है सीधे भगवान के धाम में जाना, ठीक है। हरि बोल। आपको भोग लगाते हैं तो शास्त्र के अनुसार विधि होती है, मंत्र बोलने की विधि होती है। तो हमें तब तक शास्त्र के अनुसार ही हमें भोग लगाने चाहिए जब तक कि भगवान स्वयं आपके साथ लीला ना करने लगे। और जब भगवान स्वयं लीला करें, है ना, तो हम नकल करके हम नहीं मतलब वो ऐसे बन सकते हैं, तो हमें नकल नहीं करना चाहिए उन भक्तों की। तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कि भगवान को वैसे ही बिना मंत्र के ही भोग लगाते हैं और भगवान उनके सामने खाते ही हैं और वो स्वयं खाते हैं और जो है इतना मतलब लीला करते हैं कि वो स्वयं खाते हैं। तो जब तक हमारे साथ ऐसी लीला नहीं होती भगवान की तब तक हमें नकल नहीं करना चाहिए उनकी। तो हमें तो शास्त्र की विधि के अनुसार ही मंत्र पढ़ करके ही भोग लगाना चाहिए, ठीक है ना। एक माता जी थी मथुरा में, चौबायन थी, ना? तो उनके घर में मदन मोहन जी थे, तो मदन गोपाल उनका नाम था, उनका पुत्र था। तो मदन गोपाल को भी अपना पुत्र मानती थी और दोनों को भाई मानती थी, अपने पुत्र को और मदन गोपाल को भाई मानती थी। और वह मदन गोपाल के लिए और अपने पुत्र के लिए वो सवेरे सवेरे दाल और रोटी बनाती थी, दाल रोटी बनाती थी। तो जब जब दाल बनाती तो दाल दातून जो उनकी होती उसी से चलाती दाल को, है, और तब स्नान कर लेती तब तक जो है दाल तैयार हो जाती, दाल चपाती अपने पुत्र को और मदन गोपाल को दोनों को खिलाती। तो जब सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजरे तो बहुत बड़े आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा कि माता जी ये तो ठीक नहीं है, आप स्नान करके करने के बाद ही दाल चढ़ाया करो, स्नान के पहले दाल मत चढ़ाया करो। तो बोले कि महाराज जी आप जैसा कहते हो वैसे ही करूँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो अब वैसे करने लगी। तो मदन गोपाल जी ने सनातन गोस्वामी को स्वप्न दिया कि तुमने क्या कर दिया, अब मैं भूखा रहता हूँ इतनी देर तक। वो माता जी जो है जब स्नान करेगी तब दाल चढ़ाएगी, तब जो है मैं बहुत भूखा रहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि भगवान लीला कर रहे हैं माता जी के साथ में। तो हाँ माता जी अब आप जो है वैसे ही करो जैसे पहले करती थी। तो ये सौभाग्य अगर भगवान किसी को दें तो उसको मिलता है, लेकिन हम नकल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें उसी विधि का पालन करना है जैसे शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं बताते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। पुरी में अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा क्यों होती है? नहीं, पुरी में है? वो तो मैंने बताया, आप शायद देर से आए, आप देर से आए ना। तो मैंने जो गोपाल जी ने स्वप्न दिया था, हाँ, तो रेवणा में माधवी प्रभु को स्वप्न दिया था कि चंदन गोपीनाथ जी को लगा दो, है ना। तो अक्षय तृतीया का ही जो है वो निकट में वो दिन पड़ रहा था जिस दिन से शुरू करेंगे, है ना।
जगन्नाथ जी को चंदन लगा था दिन, इंद्रदेव महाराज को भी जगन्नाथ जी ने आदेश किया था अक्षय तृतीया के दिन से लेकर 21 दिन तक,
21 दिन तक। जगन्नाथ जी ने स्वयं आदेश दिया, अच्छा, और पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है, 42 दिन लगाते हैं,
42 दिन से नया रथ बनाना भी स्टार्ट
हो, आज रथ शुरू
हो, आज से रथ बनाना शुरू करते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बहुत पवित्र है सत्युग, चूँकि उस दिन शुरू हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। धन्यवाद। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री राधा वल्लभ भगवान की, जगत गुरु श्री लभ रूपाद की।
Thank you.